शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 28/8/64 शुक्रवार, दूसरे पेज के आज में बात चल रही थी अभी ऐसा कोई दूसरा सत्संग नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट के जो कॉलेज होते हैं वो तो एम ऑब्जेक्ट होती है राजनीति की विद्या पढ़ने के लिए। ऐसा तो कोई सत्संग नहीं होगा जहां वो समझते हैं हम ईश्वर के गले में पड़े हैं। तो वह बाबा के गले में पड़े हैं, गॉड फादर के गले में पड़े हैं। फादर के गले पड़े हैं तो जरूर वर्षा मिलता है, ये जानते हो। बुद्धि ऐसे कहती है, आप में मन बुद्धि है ना, तो बुद्धि कहती है, समझती है, फिर कहती है। पहले संकल्प आते हैं, पीछे कर्म इंद्रियों से कहा जाता है। बरोबर हम बाबा के बने हुए हैं और बाबा के ही अंतिम जन्म में होकर के रहेंगे और फिर बाप से वर्षा लेंगे क्योंकि गॉड फादर है ना। कभी भी किसको तुम लोग समझाओ कि तुमको नॉलेज है गॉड फादर की, ऐसे ही पूछते हैं। सिर्फ कहने से ही झट कहेंगे गॉड इज सर्वव्यापी, अंग्रेजी में ओमनीप्रेजेंट कहेंगे। गॉड फादर परमपिता आत्मा कहती है तो पिता तो कहेंगे ना। अगर सर्वव्यापी कहें तो तुम परमपिता कैसे कह सकते हो, क्योंकि परमपिता तो एक ही होगा ना। तुम पिता कहते हो और फिर क्या बच्चे में पिता आ गया, ये तो नहीं हो सकता है। पिता तो कह ही देते हैं, हर एक से पूछो तो कहेंगे बरोबर परमपिता या गॉड फादर। अभी फादर किसने कहा, फिर फादर कह करके सर्वव्यापी कहना, ऐसे तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। देखो ये बच्चे हैं, बाबा कहेंगे बच्चे भले 5-7 हैं तो ऐसे नहीं कह सकते बाबा तुम सर्वव्यापी हो। क्या तुम बच्चे में बाबा बैठ गया, ये तो हो नहीं सकता है। बातें बहुत समझो और किससे भी पूछो तो खाली गॉड कह देते हैं। फादर नहीं कहने से मुझ पड़ते हैं, बोलो। अरे भगवान को जानते हो, बस कह देंगे यहाँ जानते हैं सर्वव्यापी है। अगर उनको तुम कहो कि परमपिता परमात्मा को जानते हो, क्योंकि पिता तो मुख से कहते हैं ना, पिता फिर मेरे में है, ये कैसे हो सकेगा? कितनी मुश्किलात की बात है ये कहना। उनको कहो तुम तो कोई बुद्धू हो, पिता कहते हो और कहते हो कि मेरे में पिता का प्रवेश है, ऐसे कैसे कह सकते हो? वो भी परम पिता का प्रवेश, तुम आत्मा ही तो हो और कहते हो कि पिता मेरे में, ऐसे तुम थोड़े ही कहेंगे कि पिता आंसू में, बच्चा आंसू में, पिता ही थे ना? ऐसे तो हो नहीं सकता है, क्योंकि मुख से तो कहते हैं पिता। अब पिता कौन कह सकते हैं? बच्चा, भले कोई बूढ़ा भी हो तो भी जब पिता कहेगा जरूर बाप को कहते हैं पिता। अब पिता कह करके अगर कह देवे मेरे में पिता है, अरे पिता पुत्र में ये कैसे हो सकता है? वो तो आत्मा है ना, वो आत्मा उनको पिता कहती है। तो ये समझाने की बातें तुम बहुत अच्छी तरह से समझ जाओ, समझो और समझाओ, क्योंकि भूले हैं एक बात। क्योंकि कहा भी जाता है भगवान वाच, अब भगवान के बदले में, रुद्र के बदले में, क्योंकि वो ही तो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, रुद्र निराकार और वो साकार, आखिर में कौन भगवान कहे, किसको कहें? कृष्ण को तो नहीं कह सकते हैं, जब तक कि वो अपन को निराकार कहलावे, भगवान कहलावे, ज्ञान का सागर कहलावे। तो मनुष्य जो बहुत भूले हैं सो एक बात में, और कितने ढेर के ढेर मनुष्य भूले हैं जो गॉड को कह दिया फादर इज ओमनीप्रेजेंट, यानी सर्वव्यापी, कहते हैं मेरे में भी है। अब कोई भी बच्चा जिसके साथ पिता हो उनसे पूछेंगे तुम्हारा बाप का नाम, तो बता देंगे कहाँ रहते हैं। अरे बाप तो घर में ही रहते हैं और कहाँ रहेंगे, कोई इस घर में नहीं, घर में रहते हैं बाप। अभी बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यानी सारी दुनिया में यहाँ आया हुआ है। और उनका विराजमान कहाँ है? कहेंगे यहाँ विराजमान है। वो फिर कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है। अट्ठाईस आठ चौसठ की वाणी का तीसरा पेज। पांचवी लाइन समझो। कोई ब्राह्मण को खिलाते हैं, समझेंगे हम बाप को खिलाते हैं, तो उस समय में बाप आकर कहेंगे ना, मैं आया हूँ, मैंने इस ब्राह्मण में प्रवेश किया है, मेरे से कुछ पूछना हो तो पूछो। जब तुम लोग कभी पितर बुलाते हो तो ऐसे होता है ना, तीर्थ वगैरह नहीं देखे हैं। आगे तो बहुत फैशन था, ये रेल वेल तो नहीं थी, टांगे की गाड़ी में जाते थे पितर बुलाने के लिए, पितरों को पूछने के लिए। माता पिता की आत्मा, उनको पितर पितर कहते हैं, पितर तो आत्मा है ना, पितरों को ही आत्मा कहते हैं ना, तब तो पितर को ही खिलाते हैं, यानी आत्मा को खिलाया जाता है। तो पितर कोई और चीज नहीं है, कोई भित्तर वित्तर नहीं है, पितर कहा ही जाता है आत्मा को, क्योंकि वो आएंगे ना, तो घर में पितर खिलाएंगे। देखो कितने कितने बरस के पितर है, दस दस बरस है, पंद्रह पंद्रह बरस के पितर है, चले आते हैं, कहेंगे आज किसका पितर है, दादे का पितर, बाबा का पितर, बच्चे का पितर, ऐसे कहते हैं ना। तो पितर माना आत्मा, तो पितर खिलाए जाते हैं बर्थडे में, यानी आत्माओं को मंगाया जाता है। उस समय में बहुत ऐसे होते हैं जिनका समझो स्त्री पर बहुत प्यार है, और उस स्त्री को बुलाता है, और वो बोलते हैं मैं अंजाम किया था, तुमको हीरे की फूली पहनाऊंगा, और तुम तो मर गई, इसलिए अच्छा अभी तुम आओ। तो वो क्या करेंगे, वो ब्राह्मणी को या ब्राह्मण को बुलाएंगे, उनको वो फूली पहनावेंगे, क्योंकि कहेंगे समझेंगे वो हमारी स्त्री की सोल है, इसलिए बैठ करके उसको नाक में हीरे की फूली पहनाएंगे। तो देखो ये बाबा अनुभव की बातें बताते हैं। अरे पर वो तो तुमने पितर को बुलाया, आत्मा को बुलाया, शरीर थोड़े ही आया। परंतु भारत में ये रिवाज है, और कोई दूसरे शहरों में ये रिवाज नहीं है। क्यों है, क्योंकि भारत में ही वो ज्योति बिंदु आत्मा जो बेहद का पितर है, सारी मनुष्य सृष्टि का पितर है, वो आते हैं, किसी दूसरे देश में नहीं आते। जैसे तुम पितर बुलाते हो, सूक्ष्म वतन में जाते हो ना, वहां किसको बुलाते हो? जो मर गया है उनका भोग लगाते हो ना, तो उनकी आत्मा यानी पितर वहां सूक्ष्म वतन में है, तो पितर यहाँ बुलाना होता है। परंतु नहीं, यहाँ भी बुला सकते हैं तो वहां भी बुला सकते हैं। ये भोग की जो बातें हैं ना, ये बहुत होती हैं। उनको इनका पता नहीं रहता है ये क्या करते हैं, तो नई बात है। इसलिए इन सब बातों में मुझते हैं। जब तक अच्छी तरह से समझ जाए तब तक मनुष्यों को बड़े संशय पड़ते कि ये क्या होता है। ऐसे समाचार आते हैं कि बहुत संशय होती है कि ये क्या करते हैं। अरे वहां जाकर के बाप के पास फूल चढ़ाते हैं, पितर आएगा तो माला नहीं चढ़ाएंगे, क्यों? फूल क्यों चढ़ाएंगे? क्योंकि पितर जो भी थे पहले शरीरधारी थे, उनका अपना शरीर था। वो पितर कोई माला रूपी संगठन नहीं बनाते हैं। कौन बनाते हैं? माला रूपी संगठन तो वेद का बाप परम पिता परमात्मा जिन्हें कहा जाता है वो ही बनाते हैं। तो बाप का पितर खिलाएंगे, उनको फूल चढ़ाएंगे, परंतु हार नहीं पहनाएंगे, क्योंकि तुम बच्चे गले का हार तो एक बेहद के परमपिता परमात्मा के पड़ते हो। ब्राह्मण को पहले पहनाते हैं, तो ये वहां बैठ करके उनको हार पहनाती है, ये करती है, तो करते हैं ना। तो ब्राह्मणों की यहाँ की भोग लगाने की भी रस्म रिवाज कैसी है? नहीं तो ठिकाने में सब में भोग लगाते हैं, मंदिर में कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, जगदम्बा के मंदिर में, खालसों के गुरुद्वारों में, सब मंदिर में भोग लगाते हैं। 28-64 की वाणी का चौथा पेज। तो ये भोग किसको लगाते हैं? है आत्मा जो जन्मने के चक्र में आती है, शरीर धारण करती है, उसको लगाते हैं, या परमपिता परमात्मा शिव जो जन्मने के चक्र में नहीं आते हैं उनको लगाते हैं? भोग किसको लगाते हैं? साकार शरीरधारियों को भोग लगाया जाता है, क्योंकि जो शरीर धारण करने वाली आत्माएं होती हैं, वो सब भोगी होती हैं, और परमपिता परमात्मा शिव वो तो अब होता है। तो पूछते हैं किसका पितर है? भले गुरु नानक की आत्मा को, वो कहाँ है? वो तो बेचारी नहीं जानते, नहीं समझते हैं। अभी तुम तो सब जान सकते हो ना कि बरोबर अभी जो सभी बड़े बड़े हैं, जिन्होंने धर्म स्थापन किया हुआ है, इनको धर्म स्थापक ही कहे, फिर वो सब इस समय में कहाँ है? यहीं इसी सृष्टि में है, क्योंकि पिछाड़ी में है बड़े बड़े मुख्य। तो सब यहाँ होंगे ना, जैसे बाबा कहते हैं कि इन द्वारा भी ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। किन द्वारा है? इन द्वारा माना एक नहीं है, दो हैं, राम और कृष्ण की आत्माओं के द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। तो ये भी तो धर्म स्थापक हुआ ना। कौन है? नहीं, यह माना एक वचन, ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल भी तो धर्म स्थापक हुआ ना। फिर दूसरा कहाँ गया? क्योंकि यहाँ भी लगा हुआ है ना, है ब्रह्मा की सोल सिर्फ ब्राह्मण धर्म स्थापन करती है प्रैक्टिकल जीवन में, या देवता धर्म ही स्थापन करती है? ब्राह्मण धर्म ही स्थापन करती है, तो भी धर्म स्थापक तो हुआ ना, ब्राह्मण धर्म स्थापन हुआ, स्थापक हुआ। इससे क्या साबित हुआ? कि राम वाली आत्मा अपने प्रैक्टिकल जीवन में ब्राह्मण धर्म के साथ साथ देवता धर्म भी स्थापन करती है। जो फेलियर होते हैं उनके लिए कहेंगे क्षत्रिय धर्म, उनका भी निमित्त वही है। तो देखो, अभी ब्राह्मण धर्म स्थापन कर रहे हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। भले शिव बाबा करवा रहे हैं, क्योंकि ये तो पतित आत्मा है ना। ब्राह्मण पावन होते हैं या पतित होते हैं? हैं? ब्राह्मण तो पावन होते हैं, तो स्थापन करने वाला भी पावन होना चाहिए। परंतु दादा लेखराज ब्रह्मा को पावन कहे या कोई भी ब्रह्मा को पावन कहे, ब्रह्मा पावन होता है या पतित होता है? चाहे वो प्रजापिता ब्रह्मा ही क्यों न हो, उनको भी क्या कहेंगे? पतित ही कहेंगे। बाप ने समझा दिया है कि जो पावन आत्माएं आती हैं, सो आकर के धर्म स्थापन करती हैं। है? चाहे इस्लाम धर्म स्थापन करने कोई आया, तो इब्राहिम पावन था या पतित था? है? पावन आत्मा परम धाम से आई। कोई भी धर्म स्थापक आया, चाहे बुद्ध आया, परम धाम से डायरेक्ट आया ना, तो वो आत्मा पावन थी या पतित थी? पावन आत्मा ही धर्म स्थापन कर सकती है, तो ब्राह्मण धर्म भी वास्तव में कौन स्थापन करता है? हैं? क्या कहेंगे? शिवबाप, शिवबाप ही ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं, वो ही देवता धर्म स्थापन करते हैं, और वो ही क्षत्रिय धर्म भी स्थापन करते हैं। शिवबाप आकर के तीन धर्मों की स्थापना करते हैं, जैसे गुरु नानक की आत्मा जो पहले पहले आई तो उसने आकर के धर्म स्थापन किया, तो वो पवित्र आएगा ना। अभी उस आत्मा को जो पवित्र आती है उनको सतो प्रधान से सतो रजो तमो से गुजरना पड़ता है। इस समय में तो सात कब्र दाखिल हैं। क्या मतलब हुआ? कब्र माने मिट्टी में दबे हुए हैं क्या? हैं? नहीं, देवान की मिट्टी में सात दब गए हैं। कोई भी धर्म पिताएं हो, कितनी भी ऊंची आत्माएं हो, इस अंतिम जन्म में आकर साफ साफ कब्र दाखिल हो जाते। ये भी कब्र दाखिल है ना? कौन? ये ब्रह्मा भी दे अभिमान की क्या, दे अभिमान की मिट्टी में इसकी आत्मा दबी हुई है।
दे अभिमान की मिट्टी में दबी हुई
है, ये कैसे कहें? इसका क्या प्रूफ हो?
नीचे में आया
है,
नीचे नीचे में आया है,
दे अभिमान में है। वो अभी की बात छोड़ दो, जिस समय वाणी चलाई जा रही उस समय की बात करो।
उस समय भी संस्था का नाम ब्रह्मा, प्रजापिता का नाम नहीं जोड़ा संस्था का नाम पर।
हाँ, दे अभिमान में आया कि ये तो मेरा भागीदार तो है, लेकिन मेरा मैनेजर था, नौकर था, ये कैसे भगवान हो सकता है? तो देवान आया ना, तो ये भी कब्र दाखिल है ना। अब बाबा को तो नहीं कहेंगे कब्र दाखिल, क्या कहा है? किसको नहीं कहेंगे है? बाबा को। बाबा किसको कहा जाता है? भविष्य की बात बताई, अभी बाबा को तो नहीं कहेंगे कब्र दाखिल, कहेंगे कब की बात बताई, कब के लिए इशारा किया? आने वाले भविष्य संक्षेत्र के लिए इशारा किया, क्योंकि वो तो है पतित पावन, ये नहीं। कौन? वो दूर क्यों कर दिया? क्योंकि वो भविष्य में पार्ट पतित पावन का बजने वाला है। पतित पावन एक के अलावा और किसी को भी नहीं कहेंगे। एक माना क्या? ज्योतिबिंदु शिव नहीं? क्यों? ज्योतिबिंदु शिव एक आत्मा नहीं है? हैं? अरे जो निराकार शिव है, ज्योतिबिंदु है, जिसकी बिंदु का ही नाम शिव है, वो पतित पावन नहीं हो सकता है? वो पतितों को पावन बनाने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि जो पावन देवताएं थे वो पतित कैसे बने? साकार के संग के रंग में आए ना, ऊपर से दूसरे धर्मों की धर्म पिताएं आत्माएं आई ना, उनके ढेर के ढेर फॉलोअर्स आए, उनके संग के रंग में सात देवताएं पतित बने। नंबर वार तो बताया इस सृष्टि पर एक का ही पार्ट है, ये नहीं कहेंगे बिंदु का पार्ट है, बिंदु भी पार्ट क्या फुदक फुदक के बजाएगा? बजाएगा नहीं, कैसे बजाएगा? कोई ना कोई शरीर का आधार लेकर के बजाएगा, जिस शरीर का आधार लेके बजाएगा उस शरीर के अंदर कहा जाएगा कि पतित पावन शिव बाबा, साकार में निराकार, उसे एक के अलावा और किसी को पतित पावन नहीं कहेंगे। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे कभी भी। अरे प्रजापिता मनुष्य नहीं है क्या? है? अरे मनुष्य नहीं है, मनुष्य है। बाबा ने तो कहा मनुष्य को पतित पावन कभी नहीं कहेंगे, हैं? मनुष्य उसे कहा जाता है जिसका मन चलायमान रहे, क्या चंचल रहे, एकाग्र न हो। और शिव जिस मुकर्र रथ में प्रवेश करते हैं उसका मन एकाग्र होता है या नहीं होता है? सदा काल के लिए होता है या कभी कभी भी होता है? सदा काल के लिए होता है। प्रवेश करने मात्र से ही सदा काल के लिए एकाग्र हो जाता है? कभी होता है कभी नहीं होता है। लेकिन और मनुष्यों का मन सदा चंचल ही रहता है। जब तक हर मनुष्य आत्मा अपना पुरुषार्थ पूरा करके संपन्न न बने तो पतित पावन माना सारी दुनिया का पतित पावन। सारी दुनिया माना है, सारी दुनिया माने जड़ और जंगम, चैतन्य और जड़ सृष्टि, सब पावन बनेंगे। क्योंकि बोला है इस प्रकृति को भी अगर पावन नहीं बनाया तो नई दुनिया बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो सारी दुनिया का पतित पावन, पतित पावन हमेशा गाया जाता है उसको जो सारी दुनिया को पावन बनाने वाला हो। सारी दुनिया क्यों कहा? क्या सारी दुनिया एक ही बाप के संसर्ग संपर्क संबंध में आएगी? है 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं एक ही मुकर्र रथधारी जिसमें शिव प्रवेश करते हैं उसके संसर्ग में संपर्क में संबंध में आएगी? आएगी नहीं आएगी। कौन आएंगे? जो भी सूर्यवंशी हैं, कौन से वंशी? जो सूर्यवंशी 4.5 लाख है, वो अपने साकार शरीर के साथ एक ज्ञान सूर्य के संसर्ग संपर्क संबंध में आएंगे, बाकी सारी दुनिया तो नहीं आएगी। तो कैसे पावन बनेंगे? हाँ? नहीं, उनके जो आधार मूर्त हैं धर्म पिताओं के, उनके जो बीज रूप हैं, वो कहाँ है? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में होंगे। उन बीज रूपों और आधार मूर्तों के द्वारा फिर वो धर्म पिताएं भी पावन बनते हैं। डायरेक्ट परमपिता परमात्मा शिव से पावन नहीं बनते, और वो अपने फॉलोअर्स को ही पावन बनाएंगे कि सारी दुनिया को पावन बनाएंगे? वो सिर्फ अपने अपने फॉलोअर्स को ही पावन बनाएंगे, सारी दुनिया को पावन नहीं बनाएंगे। क्या वो प्रकृति के 5 जड़ तत्वों को पावन बनाएंगे? हैं? नहीं बनाएंगे। क्यों? हैं? क्योंकि अगर वो प्रकृति के 5 जड़ तत्वों को पावन बनाया होता तो वो खुद के शरीर के 5 तत्वों को भी तो पावन बना लेते। संगम में बनाते हैं? नहीं बनाते। वो तो पतित के पतित शरीर ही रह जाते हैं, और उन शरीरों को यहीं छोड़ना पड़ता है। तो जो खुद के ही 5 तत्वों के शरीर को पावन नहीं बना सकता, वो फिर औरों को पावन कैसे बनाएगा? इस सृष्टि के 5 जड़ तत्वों को पावन बनाने वाले सिर्फ बाप के डायरेक्ट संपर्क संसर्ग संबंध में आने वाले ही बच्चे हैं, और संपर्क में संबंध में बिंदु की याद से कहा जाता है या शरीर की कर्मेंद्रियों के साथ संबंध होता है तब कहा जाता है संबंध माना समान बंधन, सम माने समान और सम माना संपूर्ण। शरीर की कर्मेंद्रियों का भी बंधन संपूर्ण हो, मन का भी बंधन संपूर्ण हो, दृष्टि और वृत्ति का भी संपूर्ण बंधन हो। इसीलिए तो गीता में कहा है कि जो मेरे साथ है, जिस भावना से मिलते हैं, मैं उनकी वो भावना पूरी करता हूं। सखा के रूप में मिलते हैं जैसे अर्जुन, तो सखा के रूप में उनकी भावना पूरी करता हूं सखा बन करके। पुत्र के रूप में मिलते हैं तो पिता के रूप में उनकी भावना पूरी करता हूं। प्रिया अर्थात सजनी के रूप में मिलते हैं तो सजनी के रूप में उनकी भावना पूरी करता हूं। और मुरली में भी क्या बोला? वाणी में भी बोला है जिस संबंध की रचना इस संगमयुगी शेष जन्म में बाप से नहीं ले सकेंगे, उस संबंध के लिए जन्म जन्मांतर तड़पते रहेंगे। तो वो रचना कैसे लेते हैं? बिंदु को याद करके लेते हैं, और धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स बिंदु को याद करते हैं। और भारतवासी साकार में निराकार को याद करते हैं।
मित्र
सखा माने मित्र। तो सारी दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही है, तो ऐसे कोई भी नहीं आते हैं जो पतित दुनिया को पावन बनाने वाले हो, क्योंकि वो तो आते ही हैं अपना धर्म स्थापन करने के लिए कि पतितों को पावन बनाने के लिए हैं, और आते हैं तो दुनिया को पावन बनाते हैं कि और ही दुनिया पतित होती जाती है, दुनिया तो और ही पतित होती जाती है।
बाबा
हाँ जी,
पतित है और जो ऊपर से आने वाला आत्मा तो पावन है, जो नीचे है वो पतित ही,
वो भी पतित है, उन पतितों के संग में ही वो ऊपर से आने वाली पावन आत्मा पतित बनती है ना। किसके संग के रंग में पतित बनती है, है? वो पतित के संग में ही पतित बनती है, मना जिन आत्मा में प्रवेश होता है ऊपर से आने वाले धर्म पिताओं का या उनके फॉलोअर्स का, जो ऊपर से आने वाली आत्माएं पावन है, वो पावरफुल है या कमजोर है, और प्रवेश किसमें करती है, कमजोर आत्मा में प्रवेश करती है। उनमें कमजोरी कब आई है, नहीं, उनमें कमजोरी भरी है संगम युग में। संगम युग में वो बाप के संसर्ग संपर्क में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्या वो आत्माएं संगम युग में स्पेशली बाप के संबंध संपर्क में आकर के वो पावर नहीं भर सकी जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों ने भरी। अगर भर ली होती तो उनमें वो धर्म पिताएं प्रवेश ही नहीं कर सकते, कर सकते प्रवेश ही नहीं कर सकते। जैसे समझो इस्लाम धर्म की आधारमूर्त और बीज रूप आत्मा है, कोई होगी ना, है जो इस्लाम धर्म का आधारमूर्त है, वो सतयुग में सेकंड नारायण बनेगा या नहीं बनेगा, दूसरे नंबर का नारायण, वो आधारमूर्त है, उसको भी जन्म देने वाला कोई बीज होगा कि नहीं, कोई बीज है। तो जो आधार मूर्त है उसका एक जन्म कम हो गया, चौथाई कला कम हो गई, हो गई या नहीं हो गई, कम हो गई, वो कमी उस धर्म पिता के संग के रंग में भी पहुंच जाती है। तो धर्म पिता कितने भी पावरफुल हो, लेकिन उनके आधार मूर्त और बीज रूप कंप्लीट नहीं है, तो वो भी कंप्लीट नहीं हो सकते। तो बोला ऐसे कोई भी नहीं आते हैं जो पति दुनिया को पावन बनाने वाले हो, क्योंकि वो तो अपना धर्म स्थापन करने आते हैं। क्या कहा, धर्म माने धारण, वो अपनी ही धारणाएं स्थापन करते हैं, बाप ने जो धारणाएं स्थापन कराई हैं आकर के उन बातों पर ध्यान नहीं देते। वो जो पावन आत्माएं वहां हैं परम धाम में, समझो गुरु नानक की है, क्राइस्ट की है, तो वहां क्रिश्चियन धर्म की सभी आत्माओं का सिजरा है उनके साथ, वहां ये ब्रांच है, जैसे इसमें सूक्ष्म बतन में दिखलाया है ना, तो देखो वो आत्माएं वहां रहती हैं, फिर वो क्राइस्ट आया तो फिर सब उनके पिछाड़ी आते रहेंगे, उनके फॉलोअर्स आते रहेंगे और वृद्धि को पाते रहेंगे। अभी ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि वो कोई पति दुनिया को पावन बनाने आते हैं, आते हैं, दुनिया तो और ही पति तो होती जाती है, पावन बनाने नहीं आते। वो तो आते हैं अपना रिलीजन स्थापन करने, धर्म स्थापन करने, अपनी धारणाएं अपने फॉलोअर्स की बुद्धि में थोपते हैं और उन फॉलोअर्स को वो धारणाएं अच्छी लगती हैं। और वहां निराकारी दुनिया में उनकी जो भी संस्था है वो यहां इस सृष्टि पर नंबरवार आने लगती है तो उनको थोड़े ही पतित पावन कहेंगे, हैं? क्यों नहीं कहेंगे उनको पतित पावन? क्यों नहीं कहेंगे, हैं? अरे अभी तो बताया, हाँ, उनके आने के बाद उनके फॉलोअर्स भी और ही जाती पतित बनती रहते हैं, सारी दुनिया पतित बनती है। तो उनको पतित पावन नहीं कहेंगे, पतित पावन फिर इस समय में चाहिए, इस समय में जबकि सारी दुनिया इस सृष्टि पर मौजूद है, जब धर्म पिताएं आते हैं उस समय सारी दुनिया मौजूद होती है क्या? नहीं। तो इस समय में पतित पावन चाहिए जबकि सभी पतित हो जाते हैं। तो जैसे कि सभी मैसेंजर धर्म स्थापक अभी इस समय में कब्र दाखिल हैं, क्या काय में दाखिल हैं? मिट्टी में दबे हुए हैं। कौन सी मिट्टी में? देवान की मिट्टी में दबे हुए हैं। अच्छा, शिव बाप जिसमें आते हैं, जिस मुकर्रर रथ में, वो देवान की मिट्टी में नहीं दबा हुआ है, है? हाँ, वो भी है।
आने का पहले
है देह अभिमान में, लेकिन जब बाप प्रवेश करते हैं तो उसकी बुद्धि मनन चिंतन मंथनशील बनती है या नहीं बनती है? उसे एक की ही बनती है कि सभी मनुष्यों की बनती है? एक की बनती है। इससे साबित होता है कि वो सूक्ष्म वतनवासी है, मन बुद्धि से सूक्ष्म स्टेज में रहता है या साकार दुनिया में उसकी बुद्धि अड़ी पड़ी है, हैं? सूक्ष्म वतनवासी है। सूक्ष्म वतनवासी पवित्र फरिश्ताएं होते हैं या पतित होते हैं? जब मनन चिंतनशील है, बुद्धि एकाग्र है, किसी ईश्वरीय वाक्य के मनन चिंतन मंथन में है, तो उसे पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? है? पावन कहेंगे। मन मत पर है या मनुष्यों की मत पर है या शास्त्रों की मत पर है तो पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? तो पतित कहेंगे।